તારીખ 24/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 954 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 35
શ્રી જીવ પરમાત્મને નમઃ. ઈચ્છે છે જે જોગી જન અનંત સુખ સ્વરૂપ મૂળ શુદ્ધ તે આત્મપદ સંયોગી જીવ સ્વરૂપ. જીતને ભી યોગી હૈ, યોગી માને ક્યા? जो अपने उपयोग को आत्मस्वरूप में लगाते हैं उसको योगी कहते हैं. योगी मैंने कोई बाबा हो, कोई त्यागी हो, ऐसी बात नहीं है. जिस महात्मा का उपयोग अपने स्वरूप में लगता हो, अंतर्मुख होकर के, को योगी बोलने में आता है. योग शब्द मूल शब्द तो युज है, युज धातु, युज योज टू जॉइन, जोड़ना, स्वरूप में उपयोग को जोड़ देना, लगा देना, उसी को योग कहते हैं. और ऐसे आत्मा को योगी कहा जाता है. यही योग है. अब आजकल जो योगा चलता है वो दूसरी बात है, अध्यात्म का विषय नहीं है. तो दूसरी बात है, मानसिक बात है, शारीरिक बात है, आत्मा की बात नहीं है इसमें. सभी योगी, जितने भी योगी हैं, ये सभी योगी जन अपना अनंत सुख स्वरूप को चाहते हैं, इच्छते हैं, मतलब चाहते हैं कि हमें हमारा स्वरूप का ही योग हो, हम हमारे स्वरूप में ही लीन रहें, स्वरूप को छोड़कर हमारे परिणाम और कहीं नहीं लगे. मूल शुद्ध आत्मपद, यह जो अनंत सुख स्वरूप है वो अपना मूल शुद्ध स्वरूप है. प्रत्येक आत्मा का, हमारा आत्मा का भी मूल शुद्ध आत्मपद है, आत्मपद है, जिस आत्मपद में अनंत सुख सामर्थ्य रूप से भरा हुआ है. और उसका जो प्रगट दशा है वो सामर्थ्य रूप है, शुद्ध आत्मपद. और उसकी जो प्रगट दशा है वो संयोगी जीन स्वरूप है. संयोगी मैंने मन वचन काया का योग सहित जिसको मोक्ष होता है, जो जीन स्वरूप हो जाते हैं, उसको संयोगी जीन स्वरूप कहते हैं. 13वां गुण स्थान संयोगी गुण स्थान, 14वां गुण स्थान अयोगी गुण स्थान. संयोग मैंने मन वचन काया का योग, योग मैंने संयोग. आयु बाकी है, देह सहित मुक्त दशा जिसको वर्तती है, ऐसे तीर्थंकर आदि पुरुष है, जो केवली पुरुष है, उसको वहाँ अनंत सुख प्रकट होता है. आत्मा में जो अनंत सुख भरा है वो अनंत सुख वहाँ प्रकट हो जाता है. और ऐसा प्रकट दशा, अनंत सुख भोगने की जो प्रकट दशा है, सादी अनंत काल वो दशा रहेगी, कभी उसमें कमी भी नहीं होगी. पूर्ण हो गया इसलिए कोई वैसी वृत्ति भी नहीं होगी, और कभी वो आगे जा करके खत्म नहीं होगा. शाश्वत अनंत काल पर्यंत उस सुख का अनुभव चालू रहेगा. ऐसी दशा को सभी योगी जन चाहते हैं, इच्छते हैं. और ऐसी दशा को चाहने वाले को ही योगी कहते हैं.
बराबर.
जो स्वर्गादिक के सुख का सुख को चाहते हैं, भौगोलिक सुख को चाहते हैं, चमत्कार से कुछ करना कराना चाहते हैं, उसको योगी कहते हैं?
नहीं।
जोगी जन अनंत सुख स्वरूप मूल शुद्धते आत्मपद सयोगी जीन स्वरूप। जो शुद्धात्मपद छे, ये शुद्धात्मपद मां लीन रहने अनंत सुख प्रकट था सहयोगी जीन स्वरूप। सभी योगी जन चाहते हैं, सभी योगी जन इच्छते हैं। आत्म स्वभाव अगम्यते अवलंबन आधार जिनपद थे दर्शावियो तेह स्वरूप प्रकाश। आत्म स्वभाव अगम्यते, मूल शुद्धते आत्मपद छे, तो वो आत्म स्वभाव है, अपना मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है, प्रकृति है, वो अपना मूल स्वभाव नहीं है। किसको क्रोध की होती है, लोभ की होती है, माया की होती है, मान की होती है, वो प्रकृति स्वभाव है, उद्गल स्वभाव है। जीव का मूल स्वभाव तो अनंत ज्ञान अनंत सुख है, वो अगम्य है। अगम्य मैंने इंद्रिय ज्ञान द्वारा गम्य नहीं होता, उसी को अगम्य कहते हैं। ज्ञान गम्य नहीं होता ऐसा कहने का अभिप्राय
नहीं
है। ज्ञान में अनुभव गम्य तो है ही, आत्म स्वभाव तो चतुर्थ गुण स्थान में गृहस्थ दशा में भी अनुभव गम्य है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान द्वारा गम्य नहीं है, विचार ज्ञान द्वारा भी गम्य
नहीं है,
इसलिए उसको अगम्य कहते हैं। अगम्य कहने की मर्यादा है, अपेक्षा है उतनी। आत्म स्वभाव अगम्यते अवलंबन आधार, यही अवलंबन का विषय है, यही आधार लेने का विषय है। दोनों शब्द लिया है, अवलंबन आधार, दोनों शब्द का प्रयोग किया है। हमको आत्म शांति चाहिए, अगर तो हमको हमारे शांत स्वभाव का अवलंबन लेना आवश्यक है। हम शरीर के आधार से जी करके दिल दुखी हो रहे हैं, और भी पुद्गल संयोग है, इसके आधार बुद्धि से जीते हुए परिणमन करते हुए दुखी हो रहे हैं, आकुलता हो रही है, लेकिन हमारा अनंत शांत स्वरूप स्वभाव है, उसका अंतर अवलंबन लेकर के उसके आधार से हमारा परिणमन चलता रहे, तो हमको आत्म शांति और आत्म सुख का अनुभव होता रहेगा। ये अवलंबन भूत है, आधारभूत तत्व है, हमारा स्वभाव ये हमको, और अनंत काल में वो नहीं हुआ है, इसलिए अनंत काल से दुखी है, जन्म मरण भी करते रहते हैं, चार गति है, यही कारण। आत्म स्वभाव गम्यते अवलंबन आधार जिनपद थी दर्शावियो तेह स्वरूप प्रकाश। वो जिनपद से स्वरूप को दर्शाया है। हम दृष्टांत लेते हैं इस विषय में कि 3 साल का बच्चा होता है, उसको हम बाल मंदिर में भेजते हैं, वहाँ उनको इनकी टीचर है वो सब सिखाती है, तो उसको कलर की पहचान कराते हैं। तो पहले तो उसको मुंह से बुलाते हैं कि गुलाब का कलर, गुलाब का रंग गुलाबी होता है, तो बोल भी लेगा, अनुकरण करने की शक्ति है, तो अनुकरण कर लो, क्या बोलो, क्या बोलता है, तो गुलाब का रंग गुलाबी होता है, लेकिन गुलाब क्या है और गुलाबी रंग क्या है वो उसको पता नहीं है। ऐसे हम आत्मा आत्मा करते हैं, लेकिन आत्मा क्या है इसका हमें पता नहीं है। तो जिन मार्ग में आत्मा को दर्शाने के लिए जिन बिंब, जिन पद है, जिन प्रतिमा है, उससे उसको आत्म स्वभाव को दर्शाया है कि देखिए आत्म स्वभाव ऐसा होता है। ठीक इसी बच्चे को इसकी टीचर हाथ में गुलाब का फूल रख करके बोले कि देखिए बच्चों ये गुलाब है और इसका कलर इसका रंग गुलाबी है, आया समझ में? तो भूलेगा अपने जीवन में गुलाबी रंग को कभी वो विस्मृत नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। गुलाब का रंग गुलाबी होता है ऐसा थियोरेटिकल नॉलेज उसको बता दिया, भूल लेगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि गुलाबी रंग कैसा होता है। लेकिन गुलाब दिखा करके बताओगे सिखाओगे तो कभी भूलेगा नहीं। ऐसे हम आत्मा आत्मा करते हैं, लेकिन आत्मा अरूपी होने से और इंद्रिय ज्ञान से अगोचर होने से हमको इंद्रिय ज्ञान वालों को आत्मा दिखाई नहीं देता है, न आँख से दिखाई देता है, न कान से सुनाई देता है, न नाक से सुनने में आता है, न जीभ के स्वाद में आता है, न शरीर से स्पर्श में आता है और मन से विचार में आता है। पांच इंद्रिय छठा मन से आत्मा का दर्शन होता नहीं, ज्ञान नहीं होता। तो अब क्या करें, क्योंकि आत्मा अरूपी पदार्थ है, अरूपी होने से इसमें गंध नहीं, स्पर्श नहीं, वर्ण नहीं, शब्द नहीं, कुछ नहीं। पांचों इंद्रिय के विषय है वो आत्मा में है ही नहीं, उसकी जाति ऐसी है। तो उसको दर्शाने के लिए अनादिकाल से, ये नई बात नहीं है, अनादिकाल से है। और कृत्रिम जिनबिंब तीनों लोक में है, ऊर्धलोक में भी है, मैंने स्वर्ग लोक में भी है, इधर मनुष्य लोक में भी है और नीचे पाताल लोक में भी है। कितने हैं? करोड़ों की तादाद में है। तो अनादिश है, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने प्रतिष्ठा की नहीं, जिन मंदिर भी नहीं बनाया और जिन बिंब भी नहीं बनाया। अकृत्रिम जिन चैत्यालय और अकृत्रिम जिन बिंब शाश्वत है, अनादि अनंत है। ऐसी व्यवस्था एक कुदरत से बनी हुई है। देखिए तो क्या सबूत है इसका, वहां जाते हैं लोग, देव लोग महादेव वहां जाते हैं, मनुष्य नहीं जा पाते लेकिन देव तो क्या जाते हैं, उनके पुण्य और ज्ञानी हैं और जिन बिंब को बनवाते हैं शिल्पकार से और जिन मंदिर बनवाते हैं और उसमें प्रतिष्ठा करके जिन बिंब को स्थापित करते हैं, ये भी ज्ञानियों की अनादि परंपरा चली आई हुई है। क्यों है ये कि आत्मा को संसार में परिभ्रमण करने वाले संसारी प्राणी को उसका अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि देख तेरा आत्मा ऐसा है, जैसा भगवान है ऐसा तेरा आत्मा भी भगवान है, भगवान आत्मा तो है, जितने वो शांत है उतना तेरा स्वभाव शांत है, जितने वो परिपूर्ण अंतर्मुखी है उतना तेरा स्वभाव भी अंतर्मुखी है। तो जितने अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं उतना तेरा स्वभाव भी अनंत प्रत्यक्ष है, और उनमें जो ज्ञान का ससंवेदन अनंत ससंवेदन चलता है तेरा स्वभाव भी, तू भी ससंवेदन स्वभावी है, ऐसा ही तेरा स्वरूप है। ऐसा आत्मा को, अमूर्त आत्मा को मूर्ति के रूप में दिखाने के लिए जिन बिंब की स्थापना अनादि से चली आ रही है और अकृत्रिम जिन बिंब भी अनादि से जगत में मौजूद है। इसलिए जिन प्रतिमा और जिन बिंब का किसी बहाने किसी अपेक्षा से निषेध किया नहीं जा सकता। वह अगर वो करे तो वो सतदेव तत्व का विरोध है, विराधना है, निषेध है। तो ऐसा अपराध कभी करना नहीं चाहिए। जिन पद थी दर्शावियो, आत्म स्वभाव किससे दर्शाया कि जिन पद से जिनेश्वर का जो पद है, संयोगी गुण स्थान है, देह सहित है, उसकी मूर्ति बना करके वो दर्शाया है। देह स्वरूप प्रकार, उसी प्रकार का हमारा स्वरूप है, ऐसा दर्शाने के लिए यही प्रयोग किया गया है। वो ज्ञानियों के द्वारा किया गया है, अज्ञानियों के द्वारा नहीं किया गया है। उस विषय में अज्ञानी कुछ नहीं जानते हैं। भगवान की स्थापना के विषय में ज्ञानी जानते, उतना अज्ञानी कुछ नहीं जानते। क्योंकि अज्ञानी को खबर नहीं है कि ये क्या स्थापना है। ज्ञानी के पास नए ज्ञान है और स्थापना है वो निक्षेप है। स्थापना निक्षेप, चार निक्षेप है, द्रव्य भाव, स्थापना और नाम, ऐसे चार स्थापना का नाम है। उसमें स्थापना निक्षेप है वो जिन प्रतिमा के लिए स्थापना निक्षेप है। इसको स्थापना निक्षेप है कि नई का विषय को निक्षेप कहते हैं। जिसको सम्यक श्रुत ज्ञान प्रमाण है उसके एक अंश को नई कहते हैं, प्रमाण ज्ञान के एक अंश को, और उसी नई का विषय स्थापना है। इसलिए ज्ञानी ही जानते हैं कि स्थापना कितनी उपकारी है, स्थापना का उपकार कितना है वो ज्ञानी ही जानते हैं। किसी ज्ञानी ने तो ऐसा लिखा है कि एक तीर्थंकर होते हैं इससे भी इसकी मूर्ति की स्थापना 10,000 गुनी उपकारी है, ऐसा लिखा है। क्या जीवंत सजीवन मूर्ति से, जीवंत जो तीर्थंकर है इससे इसकी स्थापना जो मूर्ति की होती है वो 10,000 गुनी उपकारी होती है। पहले तो ये लगे कि ये बात कैसी कही, भगवान तो प्रत्यक्ष सजीवन है, ये तो मूर्ति है, दोनों में तो अंतर है। लेकिन भगवान की आयु लिमिटेड है, क्या
आयु लिमिटेड,
वो केवल ज्ञान हुआ और शेष आयु जितना रहा उतना ही तीर्थंकर भगवान तो मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रतिमा हजारों साल तक रह सकती है, उसमें कुछ नहीं होता। और उस प्रतिमा में जीवन का आरोपण किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इसलिए हम प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण का आरोप किया जाता है। जिन मंदिर में जो हमारे जिन प्रतिमा है वो पत्थर की मूर्ति नहीं देखते, धातु की मूर्ति नहीं देखते, तो उसको साक्षात भगवान के रूप में ही देखते हैं। क्योंकि भगवान भी इतने स्थिर रहते हैं जितनी प्रतिमा स्थिर रहते हैं। भगवान कोई हलचल नहीं करते, बोलते नहीं, कोई आँख मिटमिटाते नहीं, उसका मुंह चलता नहीं, कुछ भी। वो प्रतिमा मत ही समोसर में विराजमान रहते हैं, वो भी प्रतिमा। तो दिखाव में तो कोई अंतर नहीं है, दिखाव में कोई अंतर, लेकिन जो जीवंत होते हैं वो कुछ आयु के मर्यादा से आगे वहाँ मौजूद नहीं रह सकते। प्रतिमा जी हजारों साल तक रह सकता है, इसलिए उसका 10,000 गुना तीर्थंकर मर्यादित होते हैं। प्रतिमा हम कितने भी बना सकते हैं।
अरे काका,
तीर्थंकर तो हमारे प्रक्षेत्र में 24 क्रम से होंगे, एक के बाद एक के बाद, वो भी एक कोड़ा कोड़ी सागर में 24 होंगे। एक करोड़ सागर मल्टीप्लाइड बाय एक करोड़ सागर, इतना लंबे काल में फिर सिर्फ 24 होंगे जो आगे से गिने जाते हैं। इसलिए प्रतिमा जी का स्थापन किया जाता है जगह जगह में।
प्रत्येक सत्पुरुष और प्रतिमा जी दोनों में है, तो वो मुष्टा की भूमिका में पहले किसके प्रति
आए? ठीक है, वो तो प्रत्यक्ष में वो तो आपको जवाब देंगे, प्रतिमा जी तो जवाब नहीं देगी। वो तो अंतर है ही, वो अंतर का बात इधर नहीं चलता। यह तो काल का अंतर दिखाते हैं कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष है, वो भी आयु पर्यंत मौजूद, जैसे तीर्थंकर का आयुष है, ऐसे किसी भी मनुष्य का तो आयुष तो होता ही है। आयुष पूरा होने से तो तीर्थंकर भगवान निर्वाण पद को प्राप्त होंगे, सिद्धालय में पधारेंगे, सतपुरुष स्वर्ग आदि में जाएंगे, उनके प्रतिभा भी है। वो तो पहचान, आत्मस्वरूप का पहचान कराने के लिए एक बहुत लंबे काल तक उपस्थित रहने वाला निमित्त है, बहुत लंबे काल तक उपस्थित रहने वाला ये निमित्त है। तो इसलिए इसका उपकार लंबे काल तक, काल के गिनती के हिसाब से 10,000 गुना बताया है, ये कारण है इसका। तो ये बात है उसमें जीन प्रवचन दुर्गम्यता, इसके पहले एक पद है, जीन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं काही, लक्ष्य थवाने तेह न कया शास्त्र। ये पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। देख भाई, जैसा जिन पद है ऐसा ही निज पद है, तेरा स्वरूप आत्म स्वरूप जिन पद है और तेरा स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान योगेंद्र आचार्य ऐसा कहते हैं योग सार में के आत्म स्वरूप में और जिन पद में कोई अंतर मानता है तो इससे बड़ा कोई पाप
नहीं है।
देखो, मिथ्या मान्यता का पाप सबसे बड़ा बताया
है
कि अपना आत्म स्वरूप को मनुष्य रूप में मान लेना क्या है,
पाप,
बड़ा पाप है। पाप इतना ही नहीं, बड़ा पाप है। मनुष्य नहीं है आत्मा, मनुष्य नहीं आत्मा, पुरुष नहीं आत्मा, स्त्री नहीं आत्मा, त्रियंत नहीं आत्मा, देवनार की भी
नहीं है,
नहीं है आत्मा, पंडित भी नहीं आत्मा, मूर्ख भी नहीं आत्मा, गृहस्थी भी नहीं और आत्मा मुनि भी
नहीं,
नहीं है आत्मा, रंक भी नहीं आत्मा, राजा भी नहीं, कोई आत्मा ऐसा नहीं होता है। ऐसा मानना ही बड़ा, सबसे बड़ा पाप है। योगेंद्राचार्य तभी भी हो कुछ भी फेर माने, थोड़ा तो फिर होगा
नहीं,
नहीं। और यहाँ कृपालु जी क्या कहते हैं कि यही दर्शाने के लिए सभी शास्त्र की रचना हुई है। ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, मुनियों ने जितने भी शास्त्र लिखे हैं यही कारण से लिखे हैं कि जिन पद निज पद एकता, भेद भाव नहीं का है, किसी भी प्रकार का उसमें भेद भाव नहीं है। ऐसा लक्ष्य होने के हेतु से, ऐसा लक्ष्य कराने के कारण से कया शास्त्र सुखदायक, सभी सुखदायक शास्त्र जो है वो कहे हैं, यही कारण से कहे हैं। इस प्रश्न में विचार करना चाहिए कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, दूसरी क्रिया में उतना हम नहीं उलझे हुए हैं जितना हम शास्त्र पढ़ने की क्रिया को करते हैं। वो भी एक क्रिया है, बाह्य क्रिया। तो शास्त्रकारों ने तो आत्मस्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए जिन पद जैसा निज पद है उसी का लक्ष्य कराने के लिए ही शास्त्र को लिखे हैं। अगर हम ऐसा लक्ष्य नहीं करते हैं तो शास्त्रकार का हेतु के विरुद्ध प्रवृत्ति हम करते हैं। शास्त्र पढ़ना, श्री गुरु का लिखा हुआ शास्त्र पढ़ना और श्री गुरु की आज्ञा विरुद्ध परिणमन करना, ये बात कहाँ से उचित होगी, कैसे उचित होगी, तो अनुचित बात है। लक्ष्य मैंने क्या, भाव भाषण, क्या लक्ष्य माने भाव भाषण, आत्म स्वरूप का भाव भाषण कराने के लिए शास्त्र लिखा है। पर हम भाव भाषण नहीं करेंगे तो हमने शास्त्र पढ़ने का कोई हेतु हमारा सिद्ध होता
नहीं। नहीं है,
निरर्थक जाता है। शास्त्र की पढ़ाई सब अध्ययन सब निरर्थक हो गया, ये बात है। ये तो बहुत सुंदर लिखा है, सुखदायक ऐसे शास्त्र क्यों कहे कि लक्ष्य थवाने ते हनो, तेनो मैंने जिन निज पद को, निज पद मैंने जिन पद जैसा निज पद है, कुछ भेदभाव नहीं है, ऐसा लक्ष्य होने के लिए ये शास्त्र लिखे गए हैं। और ऐसा ही लक्ष्य होने से शास्त्र का अध्ययन सार्थक होता है, अन्यथा निरर्थक होता है। कहते हैं कि उस शास्त्र में जिन प्रवचन है, कि जिन प्रवचन गुरु गम्यता था के अतिमतिमान, अवलंबन श्री सदगुरु सुगम अने सुख खान। दो जगह कहेंगे श्री गुरु को सुख की खान बताया है, सुख नहीं बताया है, सुख की खानी है। खान में से निकाले जाओ, निकाले जाओ, खान में से कभी खाली पड़ा शून्य पड़ा होगा, अक्षय सुख खान है। कैसा सुख खान है? उतना नहीं, अक्षय सुख के खान है। जिन प्रवचन दुर्गम्यता, जिनेन्द्र का जो प्रवचन है शास्त्रों में, वो समझना आसान नहीं है, दुर्गम है, अपने आप से समझना दुर्गम है, सर्वथा दुर्गम है ऐसा नहीं है। श्री गुरु के उपदेश से समझना तो सुगम है, श्री गुरु की आज्ञा में रहकर समझना तो सुगम है, लेकिन अपने आप से समझना दुर्गम है। हमारे आत्मा ने 11 नोपूर्व अनंत बार पढ़े हैं, लेकिन आत्मस्वरूप समझ में नहीं आया, तो अपने आप स्वच्छंद से पढ़े, और श्री गुरु से तो अंतर्मुहूर्त में आत्मा समझ में आ जाए, एक ही वचन में आत्मा समझ में आ जाए, हो सकता है। जिन प्रवचन दुर्गम्यता, दुर्गम्यता अपने आप से गम्य होने में कठिन है, ठाके अति मतिमान, कोई कितना भी बुद्धिशाली नहीं हो, मतिमान मैंने बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान हो, तगड़ा सूक्ष्म हो, अपने आप से वो आत्मस्वरूप को जिन स्वरूप जिन प्रवचन से समझ ले, ऐसा नहीं बनता। जिन प्रवचन समझाने के लिए गुरु चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अवलंबन उसके आधार श्री सदगुरु है, और इससे जिन प्रवचन सुगम होता है, और सदगुरु का साधन भी सुगम है, जिन प्रवचन भी सुगम होता है, और इसलिए सदगुरु को सुगम सुख खान, सुख की खान कहने में आ रहा है। भीतर में अनंत सुख का स्वभाव रूप आत्मा के सुख की खानी है, और बाहर में सदगुरु सुख की खानी है, बस दो सुख की खान है, बाहर में भी सुख खान, अंदर में भी सुख खान। अब क्या चाहिए आपको बताइए, और तीसरा क्या चाहिए? तो फिर और हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए भीतर में हमारे आत्मा सुख खान चाहिए, उपयोग बाहर चले तो हमारे श्री गुरु। सुगानी जी ने कहा ना, अरे विकल तुझे तेरी आयु प्रिय हो, क्योंकि वो विकल्प को मारना चाहते थे, विकल्प का नाश कर देना चाहते थे, तो विकल्प मरता नहीं था, लेकिन तेरे जिंदा रहना है, लगता है कि तुझे जिंदा रहना है, मिटेगा नहीं तो। तो अगर तुझे तेरी आयु प्रिय हो तो श्री गुरु के चरण में ले चल मुझे, ये मेरे सुख के कारण तो वहाँ है, वहाँ मुझे ले चल तो तू जिंदा रह सकता है, तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, फिर नहीं मारूंगा, वहाँ ले जाएगा तो। वरना ये सदगुरु का दिया हुआ शस्त्र तुझे खत्म कर डालेगा, तो ये जिंदा नहीं रहे। उसने मुझे एक शस्त्र दिया है विकल्प खत्म करने के लिए, अगर तू वहां नहीं ले चलेगा मुझे तो मैं तुझे खत्म कर देगा, मेरे पास शस्त्र है गुरु का दिया हुआ। बहुत भाषा अलंकार की बात किया है।
अलौकिक भक्ति किए हुए थे,
क्या हो गया है उन लोगों को? गुरु कैसे भक्ति करते हैं, कुछ हो गया होगा है? गुरु ने कुछ डाल दिया इसके सिर पे, वो क्या मिलते हैं? भूति भूति कैसे लोक में प्रचलित शब्द भूति है, आधा मात्र का भूति नाखी देती थी। श्री गुरु ने अनंत सुख की खान को बता दी है। अनंत सुख की खान को बतलाने वाले श्री गुरु को भी सुख खान कहने में आता है। देखो ऐसा ही कोई परिस्थिति बनती है।
सदगुरु के लिए विकल्प शब्द विकल्प क्यों कहते हैं?
क्या कहें फिर बताइए आप, फिर उसको क्या कहना, कुछ नाम दे दीजिए उसको।